नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार कर रहे हैं। वे आज दमदम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनका बारोईपुर में एक रैली करने का भी कार्यक्रम है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह भी प्रचार कर रहे हैं। वे आज दोपहर हिंगलगंज और कोनगर के लेबुखाली मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को वे जगदल विधानसभा क्षेत्र के आतपुर ईएसडी गेट पर रोड शो करेंगे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बैनर्जी भवानीपुर में चुनाव प्रचार करेंगी, जबकि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी आज हावड़ा और दक्षिण 24 परगना में कई स्थानों पर चुनावी सभाएं और रोड शो करेंगे। राज्य में 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 92.72% मतदान दर्ज हुआ। वहीं तमिलनाडु में 85.14% का अभूतपूर्व मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर वोट डाले गए, जबकि तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण में आजादी के बाद अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी मतदान को बदलाव के लिए बड़ा जन समर्थन बताया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतदान के बाद एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। मतदान संपन्न होने के बाद निगरानी कैमरा और वीडियो डेटा को संभालने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत मतदान केंद्र के कैमरों में इस्तेमाल किए गए एसडी कार्ड को मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद नहीं निकाला जा सकता है। इन कैमरों को सेक्टर अधिकारी की निगरानी में रखा जाना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोटक महिंद्रा बैंक और नगर निगम पंचकुला से जुड़े धोखाधड़ी मामले में छापेमारी की है। ये मामला धन शोधन से जुड़ा है। ईडी ने बताया कि चंडीगढ़, पंचकुला, जीरकपुर, डेराबस्सी और राजपुरा में 12 ठिकानों पर तलाशी ली गई। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने लोगों को हवाई या सड़क किसी भी माध्यम से ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। क्षेत्रीय तनाव के कारण हवाई क्षेत्र में पाबंदियां और अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से निर्धारित सीमा मार्गों से ही देश छोड़ने और दूतावास से समन्वय बनाए रखने की अपील की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कल रात व्हाइट हाउस में हुई बातचीत के बाद इसराइल और लेबनान 3 सप्ताह के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में इसराइल के वॉशिंगटन स्थित राजदूत येचल लीटर और लेबनान की अमेरिका स्थित राजदूत नाडा मोवाद की अमरीकी मध्यस्थता में हुई बातचीत के दूसरे दौर की मेजबानी की। श्री ट्रंप ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह में इसराइल और लेबनान के अमरीकी राजदूतों के बीच हुई ये दूसरी बैठक बहुत सफल रही। ब्रिक्स मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी देशों के समूह मेना के परामर्श सत्र के दौरान विदेश मंत्रालय में दक्षिणी क्षेत्रों की सचिव डॉ नीना मल्होत्रा ने रूस के उप विदेश मंत्री बोरिसेंको जॉर्जी से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीकी देशों मीना क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा की। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर सभी नागरिकों, विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पंचायती राज जमीनी स्तर के लोकतंत्र और सहभागी शासन की भावना का प्रतीक है। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाता है और समावेशी विकास को मजबूत करता है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच बंगलुरु में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।